राठौड़ हवेली, ऊपर वाला कमरा। अलमारी के दरवाजे बार बार जोर से खुलने बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अक्षरा जैसे बेकाबू हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे पर अब भी सफेद पट्टी बंधी थी और चेहरे पर चिढ़, गुस्सा और बेचैनी एक साथ साफ दिख रही थी। वो अलमारी के हर खाने को उलट पलट रही थी, कपड़े फेंक रही थी, ड्रॉर खींचकर बाहर निकाल रही थी। कहाँ गई, उसने झुंझलाकर खुद से कहा। यहीं तो रखी थी मैंने। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, हाथ कांप रही थे और आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। नहीं, ये कहीं गई नहीं हो सकती, वो लगभग बड़बड़ाई। तभी दरवाजा धीरे से खुला, उसकी मां अंदर आईं। उन्होंने कमरे का हाल देखा, बिखरे हुए कपड़े, खुली अलमारी और अक्षरा की हालत। अक्षरा, उन्होंने थोड़ा घबरा कर कहा, ये क्या कर रही हो तुम? अक्षरा ने पलटकर देखा भी नहीं, बस अलमारी में हाथ चलाते हुए बोली, मां, मेरी सगाई की रिंग नहीं मिल रही। मां एकदम ठिठक गईं, अंगूठी, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन, उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हें तो पिछले दिनों का कुछ याद ही नहीं है। कमरे में जैसे एक सेकंड के लिए सब रुक गया। अक्षरा के हाथ वहीं ठहर गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फैल गईं, जैसे उसे अपनी ही गलती का एहसास हो गया हो। धीरे धीरे उसने पलटकर अपनी मां की तरफ देखा। वो मैं, शब्द उसके गले में अटक गए। मां अब पूरी तरह चौकन्नी हो चुकी थीं। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो तुमने झूठ कहा है? अक्षरा चुप रही, बस उसकी सांसें तेज हो गईं। अक्षरा, मां की आवाज अब सख्त हो गई, सच क्या है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर अक्षरा ने धीरे से गहरी सांस ली और जैसे हार मानते हुए बेड पर बैठ गई। हां, उसने बहुत धीमे कहा, मैंने झूठ बोला है। मां के चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों आ गए। लेकिन ये सब कैसे? अक्षरा ने नजरें झुका लीं। जब मुझे अस्पताल ले जाया गया था, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, उसकी आंखों में वो पल फिर से उभर आया, तब मैं पूरी तरह बेहोश नहीं थी। मां ध्यान से सुन रही थी, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, अक्षरा बोली, लेकिन दिमाग काम कर रहा था। और तभी उसकी आवाज में हल्की चालाकी खुल गई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मां ने पूछा, कैसा आइडिया? अक्षरा ने हल्की सी मुस्कान दी, जो सीधी नहीं टेढ़ी थी। मैंने डॉक्टर से कहा, उसने साफ शब्दों में कहा, कि ऑपरेशन के बाद सबको बता देना कि मेरी याददाश्त चली गई है। मां की आंखें और चौड़ी हो गईं। क्या? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। डॉक्टर ने मान लिया? अक्षरा ने सिर हिलाया, हां, मैंने उसे यकीन दिला दिया कि ये मेरे भले के लिए है। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, और उसने वही कहा जो मैंने चाहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मां कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने उलझन में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अक्षरा ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में अब साफ इरादा था। क्योंकि, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे ये हवेली नहीं छोड़नी थी। मां चुप रह गई। मैं जानती थी, अक्षरा बोली, अगर सच्चाई सामने आ गई तो विश्वनाथ, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे एक सेकंड भी यहां नहीं रहने देगा। उसने मुट्ठी भींच ली, लेकिन अब मैं एक मरीज हूं, कमजोर, बेबस, जिसे याद ही नहीं कि उसने क्या किया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई, और ऐसी हालत में वो मेरे साथ सख्ती नहीं कर सकता। मां कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन बेटा, विश्वनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं वो सच में श्यामली को वापस लाने का सोच रहा हो। अक्षरा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। मुझे पता है, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो खड़ी हुई, धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने हल्का सा सिर घुमाकर कहा, वो अपनी मां के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मां ने ध्यान से सुना। जो कुछ भी हुआ, अक्षरा बोली, वो अदिति ने खेला। लेकिन चेहरा, उसने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, चेहरा उसकी मां का था। उन्होंने जो कहा, विश्वनाथ ने मान लिया। वो कुछ पल के लिए रुकी, वरना, उसने धीमे से कहा, अगर कोई और कहता तो वो कभी नहीं मानता। कमरे में एक ठहराव आ गया। दोनों के बीच एक खामोश समझ बन गई। बाहर हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर खेल अब और खतरनाक हो चुका था। अक्षरा ने धीरे से अलमारी की तरफ फिर देखा। उसकी आंखों में अब वही बेचैनी लौट आई। लेकिन वो रिंग, उसने खुद से कहा, वो मुझे ढूंढनी ही होगी, क्योंकि शायद वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि उसके अगले कदम की चाबी थी। कमरा फिर से खामोश हो गया, और इसी खामोशी में कहानी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई। ये खेल अब सीधा नहीं रहा मां, हर चाल सोच समझकर चलनी होगी, क्योंकि एक गलती और सब कुछ खत्म। विश्वनाथ का कमरा। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नाम चमका, शामली। उसने बिना ज्यादा सोचे कॉल कर दिया। कुछ सेकंड के रिंग के बाद उधर से आवाज आई, हेलो। आवाज सुनते ही विश्वनाथ की आंखों में हल्की नरमी आई, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। शामली, उसने धीमे कहा। हां विश्वनाथ जी, सब ठीक है ना? उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। आज हवेली में बहुत कुछ हो गया। शामली का दिल जैसे एकदम धड़क उठा। क्या हुआ? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। मैंने अदिति को हवेली से निकाल दिया। उधर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। क्या? शामली की आवाज हल्की कांप गई, और विश्वनाथ ने आगे कहा, आर्यन भी उसके साथ चला गया। अब उधर से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी सांसों की आवाज। फिर ये आपने क्या किया? शामली ने बहुत धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा। विश्वनाथ चुप रहा। मेरी वजह से? उसकी आवाज और भारी हो गई। ये सब हुआ है, आपको क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? उसके शब्दों में दर्द भी था और एक अजीब सा अपराध बोध भी। विश्वनाथ की उंगलियां फोन पर कस गईं। मैंने जो किया, उसने ठंडे स्वर में कहा, उसके लिए मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, बस ये एक लाइन। और उधर शामली का चेहरा सख्त हो गया। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है विश्वनाथ जी, उसने इस बार थोड़ा तेज स्वर में कहा। आप बिना सोचे फैसले लेते हैं और फिर लोग उसकी कीमत चुकाते हैं। विश्वनाथ की आंखों में हल्की सी चुभन आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज, शामली की आवाज भर आई, एक बेटा अपने पिता से दूर हो गया, एक घर टूट गया, और आप कह रहे हैं कि आपने सोचा ही नहीं? कमरे में खामोशी फैल गई। विश्वनाथ के पास इस बार कोई जवाब नहीं था। उधर शामली ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अब साफ महसूस हो रहा था। दोनों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था।